हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आयुष्मान और प्रीति की जिंदगी में उनके बेटे आर्षिक को आए लगभग 2.5 महीने हो चुके थे। बेबी अब पहले से थोड़ा बड़ा और थोड़ा शैतान भी हो गया था। वो हाथ पैर चलाने लगा था, अपनी छोटी छोटी हथेलियों से कभी कपड़े तो कभी बाल पकड़ लिया करता था, मतलब जो हाथ में आता उसे पकड़ने की कोशिश करता, और पकड़ता तो जल्दी से छोड़ता नहीं था। ऐसे तो अगर पेट भरा हो तो सारा दिन भी दादी के पास रह जाता, पर प्रीति या आयुष्मान की आवाज़ कानों में पड़ते ही उसका रोना शुरू हो जाता और वो तेज तेज हाथ पैर चलाने लगता, जिसका मतलब साफ था कि उसे अब अपने मम्मा पापा के पास जाना है। अपने हाथ या किसी और के हाथ को पकड़कर मुंह में भी डालने लगा था वो, और जब हाथ मुंह से बाहर निकालते तो रो रोकर पूरा घर सर पर उठा लेता था। मालिश करते टाइम तो वो बहुत ही परेशान करता था, काजल तो लगाने ही नहीं देता था। आयुष्मान की गोद में जाने के बाद वो उसकी गोद से उतरने को तैयार नहीं होता, और अगर प्रीति या दादी ज़बरदस्ती उसको लेने की कोशिश करती तो आयुष्मान के कपड़े को अपनी छोटी छोटी मुट्ठी में भींच लेता या फिर रोना शुरू कर देता। आयुष्मान और प्रीति का अब ज़्यादातर वक्त अपने लाडले की सेवा में ही जाता था। बच्चे के साथ आयुष्मान प्रीति का भी पूरा ध्यान रखता था, और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बेबी भी अब पहले से बेहतर था। आयुष्मान और प्रीति ने प्यार से उसके कई नाम रखे हुए थे, कभी बेटू, कभी अर्श, कभी आर्शु, और भी कई नाम थे उसके, और अब वो अपना नाम पहचानने लगा था। जब आयुष्मान उसे उसके नाम से पुकारता तो वो मुस्कुराता और अपनी भाषा में उससे बात भी करता, हूँ करके उसकी बात का जवाब भी देता। नन्हा राजकुमार अपने पापा के ज़्यादा करीब था और आयुष्मान भी उस पर चांद छिड़कता था। कुछ वक्त पहले तक तो दादी आयुष्मान और प्रीति के साथ ही रह रही थीं। उनके होने से बच्चे को संभालने में काफ़ी मदद मिली थी प्रीति और आयुष्मान को। दोनों का ये पहला बच्चा था तो दोनों ही ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। हालांकि दोनों ही बेबी को कैसे अच्छी परवरिश दें, उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस वक्त क्या बच्चे के लिए ठीक है, मतलब पेरेंटिंग के बारे में वो नेट से या पेरेंटिंग पर आधारित बुक को पढ़कर जानकारी हासिल कर चुके थे और कोशिश करते थे अपने बच्चे को एक बेहतर परवरिश देने की। पर दादी बुजुर्ग थी तो जो बातें उन्हें किताब या नेट से पता नहीं चलती थी वो बातें दादी उन्हें बता दिया करती थी। दिन में दादी और आंटी बच्चे को संभाल लेती थी, बस दूध पीने के लिए प्रीति को थोड़ा परेशान होना पड़ता था, वरना वो निश्चिंत होकर अपना काम कर लिया करती थी। और रात में आयुष्मान बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेता था। फिर भी अब छोटा बच्चा था तो दोनों ही रात भर ठीक से सो नहीं पाते थे, जिसका उन्हें ज़रा भी मलाल नहीं था। कुछ दिन पहले ही दादी वापस चली गई थीं। असल में खबर आई थी कि जसमीत गर्भवती थी, इसलिए दादी उसके पास कनाडा चली गई थीं। चाचा चाची से तो आयुष्मान के सारे संबंध टूट ही चुके थे। उस दिन की उसकी हरकत के बाद से गुरमीत से भी आयुष्मान ने सभी रिश्ते खत्म कर दिए थे, पर अपनी दोनों बहनों से कभी कभी बात कर लिया करता था। वीडियो कॉल पर वो बच्चा दिखा भी देती थीं और दोनों तो फ़ोन से निकलकर यहाँ आने को बेकरार हो उठती थीं। दादी के जाने के बाद प्रीति और आयुष्मान के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, पर धीरे धीरे दोनों कोशिश कर रहे थे सब खुद से संभालने की। प्रीति को आयुष्मान का पूरा सपोर्ट मिला था। प्रीति अपना काम भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। घर की और बच्चे की जिम्मेदारी दोनों मिलकर संभाल लेते थे। मानसी से भी आयुष्मान और प्रीति की बातें होती रहती थीं। अभी होली की छुट्टी थी तो वो यहाँ उनके पास ही रुकी थी और अपने भतीजे के साथ वक्त बिता रही थी। गरिमा जी और अवधेश जी से भी प्रीति और आयुष्मान की बात होती रहती थी। प्रेम अपनी बीवी और बच्चे को वापस ले जा चुका था। प्रीति के प्रति सबका व्यवहार सामान्य था। प्रीति भी नॉर्मली सबसे बात करती थी, पर आयुष्मान का व्यवहार गरिमा जी के प्रति कुछ बदल सा गया था। शायद नाराज़गी थी जिसे वो छुपाने की और सहज व्यवहार करने की पूरी कोशिश करता था। हालांकि वो गुस्सा नहीं था, क्योंकि प्रेम गरिमा जी का सगा बेटा था तो उनका उसके प्रति झुकाव और अपने पोते के बारे में सोचना गलत नहीं था। माँ का दिल शायद ऐसा ही होता है कि बेटा कितनी ही बड़ी गलती क्यों न करे, पर उसकी माँ उसको माफ़ कर ही देती है। पर शायद हम लड़कियों को हर गलती पर माफ़ी नहीं मिलती। खैर, ये एक अलग ही टॉपिक है जिससे कईयों के सेंटिमेंट जुड़े होंगे, तो इसे यहीं रहने देते हैं। अवधेश जी का फैसला अटल था। उस घर में प्रेम को कदम रखने की इजाज़त नहीं मिली थी। गरिमा जी की वर्षा से बात होती थी। अपने पोते का मोह नहीं छूट रहा था उनसे। प्रेम से भी उनकी अब बात होने लगी थी। मानसी की बात करें तो उसने अब तक भी प्रेम को माफ़ नहीं किया था। प्रीति की गरिमा जी से बात होती ही रहती थी। कभी कभी आयुष्मान भी उनसे बात कर लेता था, पर अब वो पहले वाली बात नहीं थी। वक्त के साथ उनका रिश्ता बदल रहा था, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। राजेश की भी प्रीति आयुष्मान से बात होती थी। अपने भांजे से भी बात करता था वो, और कभी कभी अपने साथ माधुरी की भी बात करवा देता था। राजेश के सामने माधुरी शब्दों में मिठास खोलकर प्रीति से बात करती थी। धीरज जी की भी आयुष्मान से बात हो जाती थी, शकुंतला जी की भी दोना से बात हो जाती थी, पर धीरज जी व शकुंतला जी को बच्चे से कोई मतलब नहीं था। प्रीति भी बस रिश्ते का मान रखते हुए उनसे चंद बातें कर लिया करती थी, वरना दिल से रिश्ते तो कब से टूट चुके थे। बार बार ऐसा होता है जब रिश्ते हम पर बोझ बन जाते हैं, पर समाज और अपने संस्कारों के कारण हम इतने मजबूर, बेबस और लाचार हो जाते हैं कि चाहकर भी उन रिश्तों को तोड़कर खुद को उस अनचाहे बोझ से आज़ादी नहीं दिला पाते। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर रिश्तों में प्यार और इज्जत ना मिले तो उसे टूट कर बिखरने में वक्त नहीं लगता, और उन टूटे हुए रिश्तों को वापस पहले जैसा बनाना भी नामुमकिन होता है। ऐसा ही कुछ अभी प्रीति का रिश्ता हो गया था उसके मायके से। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात बहुत बार नोटिस की है कि लोग अक्सर अपनी ही कही बातों को यूं भूल जाते हैं जैसे उन्होंने कभी वो गलत बात कही ही नहीं, पर वो भूल जाते हैं कि भले उन्हें कुछ याद नहीं पर उनके कहे कड़वे जहर भरे शब्द सामने वाले के दिल को हर पल असहनीय पीड़ा का अनुभव करवाता है, और उस पीड़ा से आज़ादी मिल पाना भी नामुमकिन है, क्योंकि व्यवहार से ज़्यादा शब्द आहत करते हैं। शब्दों में इतना बल है कि वो पल में किसी के दिल को ऐसा जख्म दे जाते हैं जो हर बीतते पल के साथ भरने की जगह और गहरा होता जाता है। शब्दों का दिया वो घाव वक्त के साथ नासूर बनता जाता है, इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर जाता है, असहनीय पीड़ा देता है, पर किसी को नज़र नहीं आता। जिसने वो कड़वे बोल कहे वो तो भूल कर एकदम नॉर्मल हो जाता है, पर जिसने उन शब्दों को सुना उनके लिए सब उसी पल में खत्म हो जाता है, और वो लाख कोशिशों के बाद भी उन बातों को भुलाकर कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यही हालात थे अभी प्रीति की जिंदगी में। धीरज जी ने तो ज्यादा कुछ कहा नहीं था, पर बिन कहे भी बहुत कुछ कह गए थे वो। समाज का हवाला देकर शकुंतला जी और माधुरी ने जो जहर उगला था वो प्रीति चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। उसके और उसके परिवार के बीच अब एक अदृश्य खाई बन चुकी थी जो भले ही किसी को नजर नहीं आ रही थी, पर वो इतनी गहरी थी कि अब उसका भरना नामुमकिन था, और अपने ही परिवार के शब्दों से आहत प्रीति उस खाई को पार करने में खुद को असमर्थ पा रही थी।
या शायद वो इन दूरियों को अब कम करना ही नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी कि उसकी खुशियों पर उसके मायके का ग्रहण लगे, इसीलिए वो इन ढाई महीने में एक बार भी वापस दिल्ली नहीं गई थी, और बात भी बस नाम के लिए ही करती थी। प्रीति और आयुष्मान माता पिता बन चुके थे, पर पूर्ण रूप से पति पत्नी बनना अभी बाकी था। एक अनदेखी सी दीवार थी उनके बीच जिसके टूटने में अभी शायद वक्त था। बच्चे के आने से उनका रिश्ता पहले से मजबूत तो हुआ था, पर अब भी उन्हें माता पिता से पति पत्नी तक के सफर को तय करना था। शायद प्रीति के प्यार को पाने के लिए आयुष्मान को अभी और इंतजार करना था।